हेलो जी, वेलकम। आप सुन रहे हैं अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। अगर गलती से पसंद आ जाए तो शेयर भी कर सकते हैं। अब मजा करिए।
खुफिया नहीं है, खुफिया है।
क्या है?
खुफिया, छोटा होता है। पुलिस वाला
खुफिया। हाँ। क्या फर्क होता है खुफिया और खुफिया में?
तुम बोले खुफिया, कुछ होता है? बोले खुफिया बोल रहे हो तुम, बड़े ऊ की मात्रा लगा रहे हो।
हाँ। तो क्या उस शब्द का कुछ मतलब है? या?
नहीं, कुछ नहीं होता, गलत हो जाता है।
अच्छा, खुफिया होता ही नहीं कुछ?
मतलब खुफिया कुछ नहीं होता, खुफिया होता है।
ओ, मैं बचपन से गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, थैंक यू। तो खुफिया जो है एक तो साला नुक्ता प्रोनाउंस करो, ऊपर से ऊ की मात्रा याद करो। तो खुफिया स्ट्रीमिंग नाउ, जो भी बोलना होता है।
हाँ, मैं बोल देता हूँ, खुफिया स्ट्रीमिंग नाउ नेटफ्लिक्स, प्लीज वॉच इट एंड लाइक इट, ट्राई टू लाइक इट।
बोलो धुड़ुम
धुड़ुम।
नहीं, एक बार ऐसे धुड़ुम।
नहीं, अब ऐसे तो तुम डायरेक्ट करा रहे हो।
एक बार कर दो यार, हमारा शो है, ऐसे करो धुड़ुम।
ओके, हमें कितने बजे निकलना होगा वो कट ऑफ टाइम बताना पड़ेगा
जी, वो बता दीजिए।
वहाँ से सामान तो लेना ही पड़ेगा,
होटल वापस भी जाना है।
12:45।
मुझे पता था कि यहाँ पे थोड़ी टाइम की लिमिटेशन होगी।
नहीं, वो इसलिए कि आज के दिन किया ना।
तो और कब करना था?
मतलब कल करते तो बहुत टाइम था।
मैं तो कर सकता था।
ओ नहीं, पर आज तो बॉम्बे
में
देखिए। अच्छा चलें, अभी इंटरव्यू कर लें, नहीं तो 25 के भी 23 हो गए।
अब आप लोग साइलेंट। अब श्रद्धा, रेस्ट अश्योर्ड, आई विल आस्क अबाउट खुफिया, आई विल आस्क 3 क्वेश्चंस अबाउट खुफिया, डोंट वरी। और जो लोग देख रहे हैं वो खुफिया आ चुका है नेटफ्लिक्स पे, तो जाके जरूर देखें। विशाल जी का सबसे बेहतरीन वर्क है आज तक का, मतलब ओमकारा और हैदर को मिला दो तो खुफिया बनता है।
देखिए तुमने?
नहीं, मैंने नहीं अभी देखा।
झूठ क्यों बोल रहे हो?
मेरे को याद है, मैं प्रीत विहार में रहता था। आई डोंट नो इफ यू नो प्रीत विहार इज ईस्ट दिल्ली। तो मैं और पापा, और पापा कभी जीन्स पहन के गॉगल्स पहन के नहीं निकलते थे, मैं और वो वैगनार में गए हैं पीवीआर नारायणा में, हमने मकड़ी देखी है। और मैं एक पॉइंट के बाद पापा को ही देख रहा था, मैं शबाना जी को देख ही नहीं पा रहा था। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंसेस। मतलब तब मुझे लगा कि कोई मेरे बच्चे होने को भी रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहा है। आई डोंट नो हु एज अ फिल्म मेकर हैज डन इट इन इंडिया as much as you have with that and blue umbrella, so yeah. you come with a lot of baggage. aapka career itna wide span hai, main kis kis bare mein baat karu, isliye maine kya kiya, maine cheats bana liye.
oh acha,
ki hum jab bhi hum kisi bhi topic pe baat karenge hame lagega kuch khatam ho raha hai, to hum mein se koi bhi ye cheat utha sakta hai.
okay,
aur fir uske bare mein baat kar sakte hain, kyunki itna mujhe aapke aapse baatein karni hai. sari cheats khatam to nahi hongi mere hisab se 1 ghante 20 minute mein, par mujhe shuru karna hai. i felt like maybe we can talk about dreams to start with. Mm-hmm. I don't know, it might fail badly. But I have a feeling you have some recurring dreams.
Recurring dreams तो I think मेरे नहीं सबके होते हैं।
Okay.
और एक जो सबसे बड़ा ड्रीम तो वो होता है जिसमें कि आपकी ट्रेन छूट रही होती है और आप प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं और
पर वो क्या रन लोला रन देखने के बाद आती है ड्रीम?
नहीं, रन लोला रन से की जो मदर फिल्म थी वो थी द ब्लाइंड चांस, किसलोस्की की। आई थिंक कहीं साइकोलॉजी से है कि कहीं आपके अंदर डर है कि आप, ट्रेन तो एक मेटाफर है पर जिंदगी में आप कुछ बहुत चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आपसे ना छूट जाए, आप उसके पीछे भाग रहे हैं पर आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं, तो मिराज जो है वो है।
व्हाट इज द ट्रेन दैट यू हैव बीन वांटिंग टू कैच एंड यू हैव बीन मिस?
आई डोंट नो, आई थिंक सबकॉन्शियस में होगा ना, क्योंकि वो ट्रेन तो बदलती रहती है।
ओके, तो अभी इस मोमेंट पे लाइफ में
आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री नाउ। मैं बहुत पक गया हूँ इंटरव्यूज कर करके और फिल्म के बारे में बात करके, तो मैं आई जस्ट वॉन्ट टू बी अवे एंड फ्री फ्रॉम दिस।
आई होप आफ्टर दिस यू फील लाइक इट वाज वर्थ योर टाइम।
नहीं, आई
एम रियली सॉरी।
नहीं, मैं तुमको ऑनेस्टली ट्रूथफुली जवाब दे रहा हूं।
एकदम ठीक है। तो ऐसा, मैं कोई अगर गलती से सवाल पूछ दूं जिसका आंसर दे के आप पक चुके हो, तो उसी वक्त बोल देना कि भाई ये रहने दे, ये बहुत हो गया।
हां ठीक
है। डू यू स्नोर?
ये माय वाइफ टेल्स मी दैट आई डू।
ठीक है। हाउ लाउड इज इट?
मैं खुद नहीं जगता हूं।
जी ठीक है। अच्छा, इतना लाउड नहीं है। क्रिकेट के बारे में बात करनी
है। आजकल तो बहुत बोरिंग है क्रिकेट देखना ना। तो एक एक बड़ा फनी किस्सा है
जी,
नसीर साहब के साथ ही है। एयर इंडिया का ग्राउंड है बॉम्बे में, वहां पे खेला करते थे, सीरियस क्रिकेट होता था। सो नसीर भाई उस दिन कीपिंग कर रहे थे। और पता नहीं क्यों कर रहे थे कि भी मुझे समझ में नहीं आया पर उनका शायद
he does not know how to do it आती नहीं
नहीं I mean वो कीपर नहीं थे
पर
पता नहीं क्यों
मतलब उनको नहीं आते
हाँ मतलब नहीं कीपर नहीं वो बैटिंग करते थे बॉलिंग करते थे पर आई थिंक उस दिन हमारा शायद कीपर होगा नहीं तो कोई और नहीं होगा तो उन्होंने वॉलंटियर किया होगा तो कीपिंग करते थे आई वॉज लाइक स्टार बॉलर ऑफ माई टीम एंड आई वॉज कैप्टन ऑल्सो सो मैं एक फास्ट ओवर डालता था बीच में
अच्छा
तो वो फास्ट वन क्या होता था कि लेग स्पिन के एक्शन से करते करते लास्ट मोमेंट पर आई यूज टू लाइक पेस बॉलर की तो वो उसको बैट्समैन को डॉज करता ही करता था मतलब 70-80% इट यूज टू वर्क इतना तेज होता था तो ये था कि यार कीपर को पता चलना चाहिए नहीं तो सर यू नो गड़बड़ हो जाएगी कि वो कैच नहीं ले पाएगा या यू नो कुछ उसको एटलीस्ट अपनी टीम को तो अवेयर होना चाहिए बैट्समैन को नहीं पता चले मेरी उस बोल का नाम अफजल भाई रख लिया था
अच्छा
तो जब मैं बोलता था कि अफजल भाई रेडी तो मतलब आने वाली है
अच्छा ठीक है
तो अफजल भाई जहाँ भी हो अफजल भाई नहीं भी हो मैच में तो अफजल भाई का नाम लिया जाता
ठीक
तो मैंने अफजल भाई नाम लिया नसीर भाई ने सुना नहीं मैंने बोल के तो बैट्समैन तो बीट हुआ उनको तो पता है ना सीधा नाक पर लगी उनके और नसीर भाई डाउन डप और उनको उठा के लेके गए बाहर और ब्लीडिंग से जो सफ़ेद शर्ट थी उनकी वो पूरी लाल हो गई
बाप रे बाप
और ले गए और वो वहीं बोला गाली देके कि मेरी कल शूटिंग है साले तूने तो मैंने बोला था अफजल भाई मैंने बोला था अफजल भाई आपने सुना नहीं तो नहीं सुना तूने नहीं बोला वो गुस्से में बोल रहे हैं तो बर्फ बर्फ ला के लगाई गई नसीर भाई को बैठाया गया फिर ठीक हो गए फिर सॉरी वॉरी बोला कि अरे यार हाँ मेरी गलती होगी बाकी सबने सुना तो मैंने नहीं सुना अगले दिन सुबह 9 बजे फिर मैंने देखा नसीर भाई का फ़ोन आ रहा है तो मुझे लगा फिर गाली देंगे कि तूने तो बोलते यार तुम कोई और गुलदार साहब की कोई प्रॉब्लम है क्या तो मैंने कहा क्या हुआ कि तुम हमारी फैमिली के पीछे पड़े हो मैंने कहा क्या हुआ बोले गुलदार साहब सुबह खार में गए और उन्होंने एक बॉल फेंकी और वो इमाद की नाक फोड़ दी उन्होंने तो
गुलदार साहब भी क्रिकेट खेलते हैं
अरे गुलदार साहब ने 30 साल बाद वो खार में टेनिस खेलने गए थे
अच्छा
तो वो ग्राउंड में गए तो देखा कि इमाद खेल रहा है इमाद को जानते थे उन्होंने कोई 35 साल बाद कभी जिंदगी में बॉल उठा के पहली बॉल जो की अपनी जिंदगी की 35 साल बाद वो इमाद की सीधे नाक पे और इमाद घर पे पहुंचा तो उसकी शर्ट पूरी लाल हम लोग
खानदान ही खत्म कर देंगे
हम लोग पूरा हंस हंस के मैं और नसीर भाई और गुलदार साहब उन्होंने बोला कि तुम दोनों ना हमारी फैमिली के पीछे पड़ गए हो
हाउ बिग इज योर टीवी
100 इंच
ओह यार
फिल्में भी देखनी होती
है ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स बनानी भी होती
है या
इवन 100 इंच टीवी
इसमें क्या तुम कुछ उसमें आ रहे हो क्या
नहीं नहीं अरे मैं बस मेरा इंटरव्यू इज ऑसिलेट्स बिटवीन एन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग इंटरव्यू बट आल्सो टैबलॉइड इंटरव्यू सो आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ मैं आपकी लाइफ की ट्रिवियल गॉसिप में भी बहुत इंटरेस्टेड हूं
ओके
जी शर्ट कहां से खरीदते हो
शर्ट बनवा लेते हैं
कहां से
टेलर बनवाते हैं
वाह वाह आपका और आपके टेलर का रिश्ता कैसा है कुछ उसमें मिलेगा ना
मेरे टेलर का रिश्ता मतलब जो मेरी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन करती है अब मैं उसकी थोड़ी सी पब्लिसिटी कर देता हूँ अभिलाषा शर्मा उसका नाम है
अच्छा वही
बहुत अच्छी वो है कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और मैं बहुत ही चूजी हूँ मैं जो कपड़ा पहनता हूँ फैशन के लिए नहीं वो मेरे बदन पे कितना चुभेगा मुझे कैसा फील होगा तो मुझे उसको लेके बड़ा पर्टिकुलर हूँ मैं
ये बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं कपड़े
हाँ ये मतलब ये मेरी शर्ट एकदम लिनन है बहुत सॉफ्ट है
आप शर्ट के बारे में भी जब बात करते हो तो इतना प्यारा लगता है नहीं 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 मैं हर फिल्म मेकर से पूछता हूँ अबाउट पॉन टू आस्क यू अबाउट पॉन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कोई लाइन क्रॉस कर रहा हूँ
नहीं पॉन तो जिंदगी का हिस्सा है मतलब एक एज में सबने देखा है अगर मैं बोलूँगा मैंने नहीं देखा है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ जिस देश में कामसूत्रा लिखा गया है जिस देश में खजुराहो के मंदिर हैं वहाँ पे तो मुझसे पॉन के बारे में पूछने में शर्मा रही है सो ये तुम्हारी अपनी कंडीशनिंग देखो
एकदम एकदम इट इज माय कंडीशनिंग एब्सोल्युटली
उसको नजरिए से देखने की बात है खजुराहो का जो मंदिर बना है उसका अगर हम ये देखें कि किसी ने बनाया क्यों होगा उसकी अगर स्पिरिचुअलिटी देखें स्पिरिचुअल लेवल पे वो मंदिर खाली है तो उसका कहना ये है कि गो विद इन दिस ऑल दीज वॉल्स ऑल दीज सेक्स इज आउटसाइड फाइनली यू हैव टू गो विद इन यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ सो दिस इज ए स्पिरिचुअल मेटाफर फॉर दैट मंदिर तोड़वाए गए मंदिर तोड़े गए गांधी जी को पसंद नहीं थे
है?
या जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है अपनी हिस्ट्री में हो सकता मैं गलत हूँ पर आजकल आज तो गांधी जी के बारे में कुछ बोल भी दो तो प्रॉब्लम नहीं है बट आई थिंक ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद दैट
अच्छा अब टाइम आ गया अच्छा, इट सेज फिल्म्स दैट इंस्पायर. अब इसमें मैं क्या सवाल पूछूं, आपने ब्लाइंड चांस के बारे में बोल ही दिया, आपने किसलोवस्की के बारे में बात की है? हाँ, अभी रिसेंटली हाँ. तो आपके बहुत इंटरव्यूज हो रहे हैं. हाँ. इस दौरान तो चार्ली चोपड़ा में भी, खुफिया में भी. मतलब किसलोवस्की के अलावा
टैरेंटिनो जैसे बहुत पसंद है. हाँ. सत्यजीत रे बहुत पसंद है.
ओके.
ऋत्विक घटक की मेघा ढाका तारा बहुत पसंद है. आई थिंक हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी जो फिल्म बनी थी. बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फिल्म बनी थी. सलीम लंगड़े पे मत रो. श्याम बाबू की कुछ फिल्में बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं.
आपकी फेवरेट गुलजार साहब फिल्म क्या है?
मेरी फेवरेट फिल्म उनकी आई थिंक मैं इजाजत बोलूंगा. मुझे इजाजत बहुत ही पसंद है. वो इतनी खूबसूरत सेंसिटिव रोमांटिक फिल्म है. वैसी फिल्में बनती नहीं है हमारे यहाँ उस डीप रोमांस के साथ.
गरम चाय साहब.
दो कप किसे?
साहब मेम साहब ने बोला था इसलिए मैं सोचा वो भी पियेंगी.
अच्छा जाओ.
मैंने तो सिर्फ चाय के लिए कह दिया था. इडियट.
अब आ गई है तो पी लो.
आप तो जानते हैं मैं चाय पीती नहीं.
हाँ जानता तो हूँ लेकिन ले आया है. कभी कभार पी तो लेती थी.
इजाजत जैसी फिल्म मैंने नहीं देखी है. इजाजत के कुछ मोमेंट्स मुझे तलवार में दिखते हैं.
हाँ.
वो मतलब वो फील शायद अचीव हो पाती है. अभी मैं मौसम देख रहा था. मौसम भी बहुत बेहतरीन फिल्म
है. मौसम भी बहुत खूबसूरत है. पर इजाजत की एक बात है. और आई थिंक अंगूर जो है,
अंगूर तो
ऑल टाइम क्लासिक है. ऑल टाइम क्लासिक.
मतलब इफ वी वर टू से दैट यू गाइस आर अ फैमिली एंड देन वी वर टू इवैल्यूएट योर शेक्सपियर फिल्म्स, आई थिंक अंगूर कुड टॉप ऑल योर फिल्म्स.
या
इफ आई मे.
या एक्चुअली कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे अंगूर का शेक्सपियर दिमाग में था. अच्छा लिटरेचर इतना फनी भी हो सकता है क्योंकि लिटरेचर का मतलब बोरिंग माना जाता है.
जी जी.
आम आदमी को लगता है अरे कुछ लिटरेरी बात हो रही है, भागो यहाँ से. सो वो कंडीशनिंग शायद मेरी भी रही होगी कहीं. तो वो जब अंगूर देखी थी बचपन में 83 की बात होगी शायद.
उस वक्त कहाँ थे आप?
मैं मेरठ में था.
मेरठ में इंदिरा गांधी की असैसिनेशन का कोई इफेक्ट हुआ था क्या?
नहीं उस वक्त तो मैं दिल्ली में था.
अच्छा तो आपने तो देखा है मतलब.
हाँ मैं हॉस्टल में था. हम लोग हिंदू कॉलेज हॉस्टल में हम लोग सब कन्फाइंड थे. पूरा खाना वाना ख़त्म हो चुका था. हमने बाजार लुटते हुए देखे हैं पीछे कमला नगर में. अपने दोस्तों को देखा जो लोग बाल कटा के आए सरदार जो दोस्त थे हमारे. जब नॉर्मल होने लगा इट वॉज रियली सैड.
हाउ बिग वॉज इंदिरा गांधी फॉर यू इन योर लाइफ एट दैट पॉइंट? क्योंकि थी तो वो एक बहुत बड़ी फिगर.
नहीं मुझे जैसे तो इमरजेंसी का टाइम भी याद है कि मुझे याद है मैं ट्रेन में आ रहा था और मेरे फादर ने पेपर लेके खोला. तो हेडलाइन थी कि इंदिरा गांधी यू नो इमरजेंसी इज अनाउंस्ड एंड माय फादर वाज इन द गवर्नमेंट ऑफिसर. तो ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट ऑफिसर को ऊपर वो था कि यू नो इतने बजे ऑफिस पहुंचना है. आई रिमेम्बर कि मतलब ये था कि एक मिनट भी लेट नहीं हो सकते. आई हैव इमेजेस ऑफ दैट फियर. नसबंदी का एक बड़ा फनी इंसिडेंट है. तो नसबंदी का फियर एक साइकोसिस चल रहा था और हम लोग स्कूल में थे. तो एक तो पहले एक ये अफवाह उड़ा करती थी अक्सर यू नो कि आज टीवी पे शोले दिखाने वाले हैं.
ये अफवाह होती थी
और सारा स्कूल खाली हो जाता था. तो ये और ये हमारे स्कूल में नहीं बहुत पूरे यू नो यूपी में होता था ये.
अच्छा.
कि आज टीवी पे शोले दिखाने वाले दोपहर में. तो सब लोग भाग जाते थे. एक दिन ही अफवाह उड़ी कि आज डॉक्टर आके बच्चों की नसबंदी करने वाले हैं. नसबंदी किसी को पता नहीं क्लास 6th 7th में होती क्या है.
अच्छा.
तो बच्चे क्लास से उठ के भागे. टीचर पूछ रहा क्या है? बोले आज नसबंदी होने वाली है बच्चों की. नसबंदी का मतलब नहीं मालूम किसी को
पर होने वाली कुछ
नसबंदी होने वाली है. तो पूरा स्कूल खाली हो गया. भाग गया पूरा स्कूल. टीचर रोकते रहे कि तो लगा कि और ये तो इसलिए रोक रहे हैं कि ये भी करवाएंगे बच्चों की नसबंदी. कितनी देर से खड़े हो? ठंडी तो नहीं कर दी?
नहीं,
बस काफी है. नहीं कुछ नहीं चाहिए. लो वो दे दो चम्मच से एक बार चला देता हूँ. ये ले जाओ नहीं तो ये बड़ी संभालनी पड़ेगी मुझे.
तीन एल्बम है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है. माचिस, सत्या और चाची 420. ये तीनों अर्ली विशाल भारद्वाज वर्क है. और जब आप फिल्म डायरेक्टर तो अभी नहीं हुए थे. मेरी इतनी समझ नहीं है म्यूजिक की मैं आपसे कोई स्मार्ट पॉइंटेड सवाल पूछ सकूं. आप अगर इन तीनों के बारे में कोई किस्सा, क्या इंस्पिरेशन थी, एनीथिंग अबाउट दिस थिंग?
पहले तो मैं इनकी एक ट्रिलॉजी आपको बताऊं, एक किस्सा। ये इन तीनों फिल्मों का माचिस तो आई बिकेम लाइक ओवरनाइट सुपरस्टार। सत्या का म्यूजिक, सत्या जब फिल्म रिलीज हुई, फिल्म इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ओवर पावरिंग थी, ओवरवेलमिंग थी, कि उसका म्यूजिक नोटिस नहीं हुआ। और कुछ एक दो क्रिटिक जो कि पर्सनली मुझे पसंद नहीं करते थे, उन्होंने जानबूझ के उसमें लिखा कि फिल्म का म्यूजिक, गाने बेकार हैं एकदम। चाची 420 में तो मुझे इतना बोला गया कि अरे इस फिल्म का म्यूजिक अगर अच्छा होता तो ये फिल्म और चलती।
चुबड़ी चुबड़ी चाची, अरे
यस
यार, क्या स्कोर है आपका यार।
मुझे बहुत, एंड मुझे लगता था मुझे तो, मैंने तो बड़ा अच्छा काम किया। तो मुझे एक चीज़ तब समझ में आई जिसने मुझे लेटर पे ऑफ किया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जब भी कुछ ख़राब होता है या गलत होता है तो अब मैं उसको समझता हूँ कि उसमें कोई एक इतनी बड़ी सीख है जो मुझे आगे बहुत बड़ा पे ऑफ होने वाला उसका। पर मुझे ये महसूस हुआ कि माचिस में, क्योंकि मैं ओवरनाइट स्टार बना था और मुझे इतना प्रेज मिला था, जो मुझे मकबूल के बाद मिला, जब फिर हैदर में मिला, जिन्होंने प्रेज किया था, मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आई, जो कि शायद मेरी अपनी भी है। मैंने अपने आप को चेक किया बाद में कि मेरी भी है, कि हम जब किसी की बहुत तारीफ करते हैं, हमको मन करता है कि अब वो गिरे नीचे तो मज़ा आएगा।
ये बात तो ठीक।
हाँ, कि जब वो बहुत तारीफ कर देते हैं कि अब देखते हैं साला बहुत क्यों उछल रहा है, बहुत बहुत बोल दिया इसके बारे में उछल रहा है, तो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी वन फिल्म वंडर।
एंड यू नो द स्पेसिफिक क्रिटिक्स हु वर डूइंग दिस
आल्सो? या खालिद मोहम्मद, मैं नाम भी ले सकता हूँ, खालिद।
उनको क्या दिक्कत थी आपसे?
पता नहीं, जो भी होगी वो, ये जरूरी नहीं कि यू नो कि हर एक को मेरा काम पसंद है।
सही बात है। उनको और उस वक्त तो खालिद जो बोल देते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता
था। पत्थर की लकीर थी, टाइम्स ऑफ इंडिया वाज इन पावर। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का
अब तो रिव्यू क्या ही होता है,
किसी का कोई रिव्यू नहीं रह गया। अब तो पब्लिक ही अपने आप यूट्यूब पे देखो, खोल के सब रिव्यूज होते हैं। मैं रिव्यूज बहुत टाइम से, इस साल से एक और उसमें बदलाव लिया है, मैं बुरे रिव्यूज पढ़ने बंद कर दिए।
बहुत अच्छा किया, सही है।
इस साल से मैंने अच्छे भी पढ़ने बंद कर दिए, कि मैंने, कि मुझे लगता था कि बुरे रिव्यू ना पढ़ के, अच्छे रिव्यू पढ़ के आपका ईगो इन्फ्लेटेड हो जाता है कि अरे देखो हाँ ये यही तो मैं कहना चाह रहा था, यही तो समझ में नहीं आ रहा
था। बात है।
और बुरे में आप डिमोरलाइज हो जाते कि अरे यार अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई, इनको ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगा कि मैं मिडिल में रहता हूँ ना, मैं अच्छे देखूँ ना मैं बुरे देखूँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब इनको जो लिखना है वो लिखें।
रिटन बाय अनुराग कश्यप, डायरेक्टेड बाय आरजीवी, म्यूजिक बाय विशाल भारद्वाज। Like it had to be a classic. And so, anything about that?
Yeah, Ram Gopal Varma, बहुत ही उनका भयानक सेंस ऑफ ह्यूमर है। बहुत जबरदस्त।
डरावना?
नहीं नहीं नहीं, डरावना नहीं, बहुत शार्प है। रामू इज सो क्लियर अबाउट वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम हिज लाइफ, वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम हिज फिल्म, वॉट ही वॉन्ट्स फ्रॉम हिज रिलेशनशिप। आई कैन से दैट इट्स हिज स्पिरिचुअलिटी। ही इज सच ए फैंटास्टिक फिल्म मेकर, ही वॉज। स्लोली करते करते हम लोग फिर उस फिल्म का म्यूजिक को हमने डिस्कवर किया। तो अनुराग ना कुछ भी बोल देता था, एंड बिकॉज वो रखता नहीं था अंदर एकदम, एंड इसलिए अनुराग की बात मानी जाती थी कि उससे पूछो ये तो कोई फिल्टर होगा ही नहीं, कुछ भी बोल देगा। तो रामू कुछ बहुत बार ऐसा हुआ है, एक बार नहीं दो तीन बार, कि हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे और अनुराग ने कुछ डिस्कशन चल रहा है, सडनली अनुराग ने बोला बट आई डोंट थिंक दिस इज राइट, इट हैज टू बी लाइक दिस। एंड रामू यूज टू लुक एट हिम और सीधा उठ के जमीन में साष्टांग प्रणाम उसके लेट जाता था पैर में, कि तुम्हारे एक बार नहीं कम से कम दो तीन बार मैंने देखा है। एंड इट यूज टू बी लाफ्टर, क्योंकि मज़ा आ जाता था वो देख के, वो माहौल था, सब मकरंद सब लोग यू नो साथ, मनोज हम सब लोग साथ में बैठा करते थे।
क्या एनर्जी होती होगी,
बहुत एनर्जी, वो एक अलग ही वाइब्रेंस था। एक गाना कल्लू मामा, इट्स ए क्लासिक एग्जाम्पल। जब हम लोग म्यूजिक कंपोजर्स ट्यून्स बनाते हैं तो हम लोग उसके ऊपर अपने वर्ड्स लिखते हैं लिरिसिस्ट को बताने के लिए कि ये मीटर है।
ओके, ठीक है।
तो वो कुछ भी हो सकते हैं, मोस्टली जाने मन जाने जहाँ जाने जहाँ ही करते रहते हैं सब।
ठीक है, ठीक है।
मैं क्योंकि पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं, मुझे ऐसा बकवास लिखने में नहीं होता, गाने में भी लगता था कुछ तो मीनिंग आ जाए ना ये दे रहा हूँ। तो मैंने उसका डमी मुखड़ा जो लिखा था वो हाँ। था जब तलक रहेंगे गम तब तक पिएंगे हम, तो गम के नीचे बम लगा के गम उड़ा दे, मार गोली दर्द के दम उड़ा दे मामा कल्लू मामा। तो कल्लू मामा का गाना मैंने बनाया, कल्लू मामा कैरेक्टर मैंने लिया हाँ। और कल्लू क्योंकि रामू ने नहीं दिया था, मैंने कहा कि कल्लू मामा
अच्छा।
कि कल्लू मामा एक कमाल की चीज़ है, कल्लू मामा का गाना बनाते हैं, तो ये लेके मैंने बनाया। अब ये लोग तो पागल हो गए सुन के कि अरे गम के नीचे बम लगा के गम उड़ा दे मामा कल्लू मामा। अब जब गुलदार साहब के पास गए गाना लिखवाने, तो गुलदार साहब ने बोला ये ट्यून तो बहुत अच्छी है पर ये क्या गिमिक, ये क्या बकवास है, गम के नीचे बम लगा के गम उड़ा दे। ऑब्वियसली मैं तो गुलदार साहब की इतनी इतनी मोहब्बत है मुझे उनकी शायरी से
ऑफकोर्स,
और उनकी सोच से और उनके विजडम से कि ये बोल रहे हैं कुछ तो इसमें सही ही होगा। तो मैं तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैंने तो ये डमी लिख के दिया आप लिख दीजिए। अब गुलदार साहब ने जो लिख के दिया इनको हजम ना हो किसी को भी, तो एक बार लिखा गुलदार साहब ने कि नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा, दोबारा लिखा गुलदार साहब ने नहीं सर मज़ा नहीं आ रहा। सो ठीक है, तो फिर हुआ कि अब तीसरी बार कौन बोलेगा, तो रामू ने प्रिपेयर किया अनुराग को।
अच्छा
कि तो अब सिटिंग में हम बैठे हैं, मैं गुलदार साहब रामू और रामू अंदर अनुराग को लेके आया, पहले नहीं लेके आता था अनुराग।
अच्छा।
आया बैठा तो जी वर्ड सुनाए गए कि गा के देखा तो रामू तो नाइस नाइस नाइस। अनुराग बोला कि सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अनुराग ने बोला कि सर अच्छे हैं बट जो वो लाइन है ना गम के नीचे बम लगा के गम उड़ा दे वो बहुत अच्छी है वैसा नहीं है। तो गुलदार साहब ने बोला कि बेटा पहले गम ठीक से बोलना तो सीखो, गम नहीं होता है गम होता है, एंड काटो तो खून नहीं। रामू ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने मुझे आके एक दिन बोला आई वॉन्ट यू टू रिकॉर्ड योर वर्ड्स इन द सॉन्ग।
अच्छा।
आई एम नॉट गोइंग टू पिक्चराइज दिस, आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाय इट। तो मैंने कहा कि ओके एज अ डायरेक्टर यू हैव द राइट टू डू दिस बट यू इन्फॉर्म गुलदार साहब, एंड ही सेड कि नो आई विल टेल यू व्हेन आई वांट यू रिकॉर्ड द सॉन्ग, एंड आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बिट्रे हिम। आप उन्हें पहले बताइए मैं गाना रिकॉर्ड करूँगा, वो अगर मुझे मना भी करेंगे वो करेंगे भी नहीं, वो इतने वर्ल्ड में बोलेंगे अच्छा ये पसंद है तो आप करो पर मेरा कोई मतलब नहीं है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। बोले मैं नहीं बताऊंगा, तो मैंने बोला फिर मैं नहीं करूंगा, तो बोले हम आगे काम नहीं करेंगे। मैंने बोला आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमारा कॉन्वर्सेशन एंड हुआ, एंड ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू शूट द सॉन्ग, एंड ही डिडंट टिल द लास्ट मोमेंट। जब वहाँ पे उस जगह लोग सीन शूट कर रहे थे तो मनोज वगैरह सबने रामू को मनाया कि रामू यार आज जल्दी पैकअप हो गया है, अपने पास एक शिफ्ट है, वो गाना कर लेते ना शूट, नहीं पसंद तो मत रखना, पर जो विशाल बोल रहा है वो जो गुलदार साहब के वर्ड्स हैं कर लेते हैं। गाना शूट कर लिया, फिर जब गाना शूट किया तो उसने कहा हाँ ठीक ही लग रहा है रख लेते हैं फिल्म में। आफ्टर वन एंड हाफ ईयर रामू वन नाइट यू नो देयर वाज अ डोरबेल लाइक 1:30 मैंने देखा पीपल से, तो रामू वाज स्टैंडिंग विद वोडका बॉटल एंड ही केम टू मी यार हाउ रॉन्ग वर वी। व्हाट रामू यूज्ड टू से कि इस लाइन पे ना कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता यूज्ड टू से कि अरे मुझे इसमें भेजागरी दिखाई दी बिकॉज ही इज फ्रॉम हैदराबाद, वहाँ पे भेजागरी बहुत अच्छी बनती है। उसने बोला कि वो मुझे भेजे में मुझे भेजागरी पसंद है,
हैदराबादी आदमी उसको। डू ड्रिंक?
यस।
What is your preferred drink?
पहले सिंगल मॉल्ट वगैरह हुआ करता था, अब मुझे उससे मैं बाहर आ गया।
सिंगल मॉल्ट का चार्म क्या विशाल जी, मुझे जरा समझाओ, मुझे ना आज तक
कुछ नहीं
समझ
नहीं, कुछ नहीं, बकवास है। जैसे इंडिया में एक बार ब्लैक लेबल का शुरू हुआ था ना, कि स्टेटस सिंबल होता था ब्लैक लेबल, फिर ये होता था कि सिंगल मॉल्ट आया कि अरे यू आर नॉट हैविंग अ सिंगल मॉल्ट यू नो, तो आपको थोड़ा सा वो लगता था कि अरे यार मैं सिंगल मॉल्ट क्या है मुझे नहीं पता है।
फर्स्ट टाइम ठेके पर कब गए थे आप और कौन से ठेके पे गए थे
खरीदने के लिए?
जी 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 जी।
उतना तो याद भी कैसे होगा,
मलकागंज वाला ठेका कुछ कुछ तो होगा।
यहाँ पे होता था बहुत बढ़िया ये गोल मार्केट में।
अच्छा।
मेरा भाई एक बार बॉम्बे से वापस आया दिल्ली में, उसने बोला कि यार ड्रिंक करना है तो लेने चलते हैं, तो मैंने कहा यार 6:35 हो रहे हैं भागो। तो वहाँ पहुँचे ठेके पे तो ही वॉज शॉक्ड कि जो लोग मांग रहे थे, एक बोला 12 वाले दे दे, एक बोला 14 वाले दे दे, एक 18 का चाहिए।
अच्छा।
तो पैसे से हो रहा था, कोई ब्रांड नहीं था,
ठीक है,
कुछ नहीं था, आपको पैसे से दारू लेनी होती थी कि 18 वाला पौवा दे दे,
ठीक है,
20 का विस्की वाला पौवा दे दे, ऐसा हुआ करता था। तो यू शॉक्ड, उसने बोला बॉम्बे में तो दुकान पे जाइए तो मतलब आपको तमीज़ के साथ पेश आया जाता है कि आप क्या लेंगे, यू नो, पूरा। या अब पता नहीं क्या सीन है, अब तो शायद सुधर गया होगा।
मतलब क्लास का डिफरेंस है, एक सर्टन क्लास अभी भी 40 वाला पौवा दे दे, 60 वाला पौवा दे दे, वो आवाजें भी आती हैं। हाँ। जो हमारे जैसे प्रिविलेज हैं वो ब्रांड बता के लेते हैं, तो वो तो एक क्लास में तो अभी भी वही है।
ओके।
कमल हसन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, वो ही डायरेक्टेड द फिल्म आल्सो, इफ आई एम नॉट
राइट, या ही डायरेक्टेड इन द, ही टुक ओवर इन द मिडल। बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है,
ओके,
इस हद तक कि आपको परेशान कर देते हैं कि आपको मन करता है कि भाग जाओ इनके पास से।
ओके।
क्योंकि आप जो भी बोलें उसके बारे में उनको आपसे ज़्यादा पता है। बट ए जीनियस मैन टू वर्क विद। एक टाइम में काफ़ी हद तक हम लोग आगे पहुंच गए थे कि वो ही वॉज टू प्ले मकबूल।
आई हैव बीन टोल्ड फ्रॉम सम फ्रेंड्स इन बॉम्बे दैट नसीर साहब टोल्ड यू इफ यू टेक कमल हसन आई एम नॉट डूइंग इट।
नॉट दैट स्ट्रॉन्ग
एंड आई डोंट इवन रिमेंबर कि किसने मुझे बताया। बस कुछ दोस्तों स्ट्रगलर्स की टॉक है शायद
इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड में नहीं बोला होगा। हाँ। उन्होंने बोला होगा कि तुम सोच लो।
अच्छा, ठीक, मतलब बोला तो था।
हाँ, ऑब्वियसली बोला। हाँ,
तो
क्योंकि नसीर भाई ने भी कमल के साथ काम किया हुआ है।
सो दे डोंट गेट अलोंग?
नहीं, इट्स नॉट गेटिंग अलोंग। तो मैंने बोला ना, कमल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ही इज वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स, देयर इज नो डिस्कशन अबाउट इट बिकॉज
वही सही है, वही सही,
और डायरेक्टर हैज टू बी राइट। नो,
पर आपको डर था कि मकबूल में भी ऐसा होगा जहां वो डायरेक्टर
नहीं,
नहीं
है? हम लोगों ने इंटरेक्ट किया और okay. उसमें मुझे हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ गया द वे वी वर सीइंग द फिल्म। तो वो चाहते थे कि ये फिल्म बायलिंगुअल बने, हम लोग हिंदी में भी करें, तमिल में भी करें, और तमिल में अलग एक स्टार कास्ट साथ में हो, एक शॉट दो बार होगा। तो मुझे लगा कि मैं कहीं जो मैं अचीव करने जा रहा हूँ वो मैं कहीं बिजनेस में पढ़ रहा हूँ इसका। और मैं उस वक्त बहुत ही ज़िद्दी हुआ करता था और मैं अब चाहता था कि मेरी फिल्म बने, किसी और की फिल्म ना बने। अभी भी जब भी वो मुझे मिलते हैं तो मुझसे कभी पूछते हैं व्हेन आई एम गेटिंग माय कॉल शीट। सो
मैं आना चाहता हूँ थोड़े पॉलिटिकल सवाल पे, पर पता नहीं आपको लगे कि ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है तो प्लीज़ उसी वक्त टोक देना।
हाँ।
गुंडागर्दी में आपको फ़र्क दिखता है क्या? आपने वो टाइम भी देखा है जब कांग्रेस ही सब कुछ थी, और अब एक और टाइम है जहाँ बीजेपी सब कुछ है, एक ऐसा लगता है नहीं, और तब भी शायद कांग्रेस सब कुछ नहीं थी, लेकिन क्या गुंडागर्दी में फ़र्क दिखता है आपको? क्या इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है या वही नेचर स्टेट का या जो पार्टी रूल करेगी कि
क्योंकि पावर के पास तो गुंडागर्दी होती है। तो उस वक्त भी इंसिडेंट, मैं अभी रोक रहा था अपने को बोलने के लिए, पर सफदर का जब हुआ था तो वो तो NCY कांग्रेस का था और याद है हमें,
आप कॉलेज में थे तो
हमने सफदर के लिए गाना गाया था जाके, उसके बाद तो मूवमेंट शुरू हुआ था सफदर को लेके, वो भी वक्त था, तो वो भी तो गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी आज भी, अभी क्या है कि एटलीस्ट नाम तो होता था गुंडागर्दी का, अभी जो है वो एक मॉब हो गया है, मॉब लिंच कर देता है, मॉब का कोई नाम नहीं है, मॉब का नाम ना NSUI है, ना ABVP है, ना BJP है, मॉब। तो एक उसको जो एक वैलिडेशन मिल गया है, इट्स वेरी सैड थिंग।
पार्लियामेंट में जब ऐसे शब्द यूज़ होंगे तो फिर देश कहाँ जा रहा है? जो रमेश भिदूड़ी ने अभी जो शब्द यूज़ किए हैं,
हाँ, वो नई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज बन रही है। हम लोग भी कम से कम कोट कर सकते हैं कि हम भी फिल्म में बढ़वा बोल सकते हैं किसी को, अब तो पार्लियामेंट में भी बोला जाए,
और उसको ए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा होपफुली अब।
हाँ, ए के अलावा मतलब पास ही कर दें, ए के साथ भी कर दें, पास कर दें,
क्या करें? जनरली सवाल है, क्या करें? क्या उत्तरदायित्व है अभी एक नागरिक का?
नागरिक थोड़ा सा जागा रहे पहले, तो उत्तरदायित्व तो तब निभाएगा जब थोड़ा सा जागेगा। तो अभी वो भी एक यूफोरिया में है, एक सच देखने का जो वो है उसका ब्लर हो चुका है। नहीं तो हम लोग ऐसे, हम लोग नहीं हैं, हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, कलेक्टिवली बोल रहा हूँ मैं ये बात। मैं किसी धर्म, किसी जाति या किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम कलेक्टिवली हम लोग अच्छे लोग हैं। ये है कि इस वक्त पता नहीं हम किस मूड में हैं कि हम लोग यू नो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये भी पर शायद एक फेज़ है जो कि निकल जाएगा, और अच्छा कि निकल जाए, कि अगर इतना जमा हो गया था अंदर तो हम उलट ही दें बाहर, हम मूवमेंट कर ही लें, पूरा ही कर लें, मूवमेंट रहना जाए, एक ही बार साफ हो जाए। आई थिंक ये उस फेज़ में हो जाएगा, और इतना कोई ना तुम्हें परेशान होने की जरूरत है, ना तुम देश को कंधों पर उठा के चल रहे हो,
बिल्कुल ठीक बात,
ना मैं चल रहा हूँ। पहले जब था हम तब भी दुखी थे कि करप्शन है, हम अब भी दुखी हैं कि डेमोक्रेसी उसमें,
अपना अपना करते हैं,
हम अपने दुख में रहने ही वाले हैं। यू नो जीवन दुख है, बुद्ध ने बोला है, तो वो दुख में हम रहने वाले हैं, उसी में अपनी खुशी और सुख ढूंढते रहें। बाकी क्या है, जो होना है अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप नेचर भी कुछ है, नेचर भी कुछ करती है, नेचर का नेचर नहीं आज यहाँ ला के पहुँचाया, हम जहाँ हैं और अच्छी जगह पहुँचा हुआ है, तुम भी अच्छे पैसे कमा रहे हो, चश्मे वाली टी शर्ट पहन के बैठे हो, मैं अपना बढ़िया लिनन पहन के बैठा हूँ,
मजे ले रहे हैं, एकदम ठीक बोलिए। मृत्यु के बारे में सोचते हो?
मौत से तो मोहब्बत है यार, शर्तिया चीज है जो होगी,
ठीक बात है,
वो तो होनी ही है, उसको जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतनी जल्दी उसका डर निकल जाता है,
ठीक बात,
उसका दुख होता है कि अरे यार सब दोस्त छूट जाएंगे।
When did you realize that you are also mortal? Because मेरे को ऐसा लगता है विशाल जी कि एक जब आप बड़े हो रहे होते हो तो एक पॉइंट आता है जब आपको तब महसूस होता है कि यू आर ऑल्सो एज मॉर्टल एज अदर्स, अदरवाइज यू कीप थिंकिंग दैट यू आर इमॉर्टल, और वो एक बचपना होता होगा।
हाँ नहीं, वो क्योंकि हम देखना नहीं चाहते ना, वो मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली माई फादर डाइड वेरी यंग एंड वेरी सडन व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड, तो वो देट वॉज अ शॉक फॉर मी कि अभी हैं अभी नहीं है, तो वो जो फीलिंग होती है ना कि जहाँ पे आपको लगता है कि किसी को आप कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं देख पाओगे, और वही आपको अपने मौत से डर क्या होता है कि आप ख़त्म हो जाओगे,
करेक्ट,
आप ख़त्म हो गए तो आपके साथ आपके सारे रिश्ते ख़त्म हो गए, आप वो सब करने लगते हो, मेरे बाद मेरी पहचान बनी रहे, क्यों बनी रहे भैया, ज़रूरी कि मैं अपनी फिल्मों से पहचाना जाऊँ या मैं इससे पहचाना,
और वो सब आपके इंटरेस्ट में नहीं है
अब? नहीं है ऑब्वियसली, या मैं अब अगर बोलूँ कि मैं बचपन से ऐसा था, ऐसा तो नहीं था ना, धीरे 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 समझ में आया, ओशो को इतना सुनना, तो ओशो की वजह से ये चीज़ें हुई हैं कि जिससे कि मौत का डर निकला, अपने ऊपर काम करना शुरू किया कि नथिंग इज़ वर्थ इट।
ओशो की प्रोनंसिएशन बहुत खास नहीं थी, हाँ, वो शवा नहीं बोल पाते थे ना,
हाँ, पर हाँ, वो क्या
बस ऐसी जन,
उनके नुक्ते नहीं थे कहीं भी,
कहीं भी नहीं है,
कहीं भी गलत जगह लगाते तो नुक्ते, मगर
गलत कैसे बोलते नहीं, कैन यू गो ऑन,
मगर उनका उनका कंटेंट जो था ना, हाँ, उनकी अंग्रेजी सुनिए, पता नहीं अमेरिकन को समझ में कैसे आती होगी, पर वो अमेरिकन उनके सबसे ज्यादा, तो उनके मतलब रीगन हिल गया उनसे, जिसने कि उसको लगा कि ये आदमी टेक ओवर ना कर ले अमेरिका तो निकालना पड़ा,
सही बात है,
जेल में रखा, थेलियम दिया, उनका जो कंटेंट था, कंटेंट का लैंग्वेज से कोई मतलब ही नहीं था, कि उनकी तो साइलेंस में भी यू नो आवाज थी।
Do you listen to other people or do you think Osho is the epitome of what you want to achieve spiritually?
No, I don't.
क्योंकि obviously मूर्ति पूजन में तो आप नहीं विश्वास करते होंगे।
Obviously बिल्कुल नहीं।
आप वो उस टाइप के आदमी नहीं हो।
पाहन पूजे हरी मिले, हाँ, तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन मतलब पत्थर, पत्थर पूजने से अगर हरी भगवान
तो
मिले,
मैं पूजूं पहाड़।
तो मैं पहाड़ पूजूं, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये चक्की उससे बेहतर है जिसमें पीस पीस के पूरी दुनिया खा लेती। तो मूर्ति और ऐसी मुस्लिम्स पे बोला था उन्होंने, आज बेचारे क्या होते कबीर होते तो उनका, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, तापे मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, बहरा हो गया खुदा कि तुम मस्जिद से चिल्ला रहा है। ये थे कबीर,
मतलब जितनी बाउंड्री पुश कर सकते थे वो तो उन्होंने की,
हाँ बिल्कुल की।
तो क्या इनसिक्योरिटी?
इनसिक्योरिटी ये लगता है पैसा खत्म ना हो जाए यार।
पैसे के साथ आपका कैसा रिश्ता है अभी?
पैसे के साथ रिश्ता ये कि वो जैसे तुम्हारा होगा कि हमेशा कम पड़ता है,
उसी पे काम किया जा रहा है कि
साला
नीड्स इतनी कम रखेंगे जितना, क्योंकि जितना मैं अभी कमा रहा हूँ, पांच साल पहले कोई मुझे बोलता है इतना कमाओगे तो ठीक है सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 100 करोड़ ही एक फिगर आ गई अगर दिमाग में तो वो तो कभी अचीव नहीं होगी, 100 होगी तो 1000 आ जाएगी।
तुमको स्पिरिचुअल सर्मन्स करने चाहिए, ये सबकी यही प्रॉब्लम है।
आपको भी ये लगता है? आप तो अच्छे खासे पैसे।
लगता नहीं, ऐसा होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है।
आपने नोटिस किया मैंने अच्छे खासे कैसे बोला?
अरे बहुत अच्छा बोले,
सॉरी।
ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जितना है उतना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है।
क्या ये भी गुलजार साहब ने लिखा?
हाँ,
थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। मुझे समझ नहीं आता आपकी ट्रिलॉजी भी बात करें तो कितनी लंबी चली जाए, क्योंकि उसका म्यूजिक भी है और तीनों फिल्में इंडिविजुअली इतनी, मतलब दे अचीव सो मच, एंड सो आई डोंट नो, वी कैन मे बी स्टार्ट विद हैदर, बिकॉज यू हैव सेड दैट म्यूजिकली यू थिंक यू अचीव्ड मोर ऑन दैट। अब जैसा मैंने बोला, मेरी म्यूजिक की उतनी समझ नहीं कि आपसे स्पेसिफिकली पूछूं, जस्ट द एक्सपीरियंस ऑफ हैदर, एनीथिंग अबाउट दैट?
आप बाद में क्रेडिट लेने लगते हो इसका, बट ये चीजें कुछ अपने आप होती हैं, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हैदर जैसी फिल्म बन जाए। उस फिल्म को इतना अच्छे से कश्मीर उसमें एक्सप्लोर हो जाना, तो मैं मैच्योर्ड था उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वहाँ की लाइफ को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के म्यूज़िक में, तो क्योंकि मेरा मैं पुराना था काफ़ी, तो म्यूज़िक मेरे लिए पकड़ना बहुत आसान था वहाँ पे, क्योंकि म्यूज़िकली मैंने जब सुना तो वहाँ के एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रबाब है या और जो स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मुझे म्यूज़िकली मालूम था कि अच्छा इसको कैसे अचीव करना है, ये तो मुझे मालूम है। जो वहाँ के म्यूज़िक में एक स्पेशल फ्रेजेज हैं या जो कॉम्बिनेशन है सुरों का, वो मुझे एज ए प्रोफेशनल क्योंकि मैं था, तो वहाँ की जो ज़िंदगी है उसको अचीव करना, कि वो आप पर्दे पे आप उतारें कि और आपको लगे कि आप कश्मीर के अंदर बैठे हैं, और या उस कश्मीर में जो आपने नहीं देखा है, या जो आप कश्मीरी होके अगर आप बोलें कि हाँ ये तो हमारी कहानी, वो बहुत मुश्किल काम था। और वो किस्मत से होता है, अगर मेरे करे से होता तो हर बार होता मुझसे। राग रसोई पागड़ी कभी कभी बंध जाए, कभी कभी बन जाए, तो ये वो जो कहावत है ना हमारे म्यूज़िक में, ये है कि राग आप हमेशा कोशिश करो जमाने की, गाने वाला हमेशा नहीं बनेगा, किसी दिन ऐसा होगा कि उसका कोई रीज़न नहीं होगा कि वो क्यों अच्छा हुआ। ऐसे ही रसोई में जब खाना आप पकाते हैं, माँ पकाती है या आप कभी पकाते हैं, वो कभी एक ऐसा टेस्ट आ जाता है कि वो कैसे आया पता नहीं। और ऐसी जब पगड़ी बनती है तो कब वो ऐसी किसी दिन अच्छी बन जाती है कि आपको उसका रीज़न नहीं होगा।
राग रसोई पगड़ी,
राग रसोई पगड़ी कभी कभी बन जाए।
पर क्या कुछ सही फीलिंग आ जाती है विशाल जी, क्योंकि ऐसी फिल्में भी हैं आपकी जिनको आप भी शायद उतना परफेक्ट नहीं मानते हो, कुछ कुछ सम फिल्म्स आर बेटर देन द अदर फिल्म्स, एंड ऑफ कोर्स ऑल फिल्म्स ऑफ योर्स हैव सम गोल्डन मोमेंट्स, बट सम फिल्म्स आर बेटर देन अदर फिल्म्स, एंड सो व्हाइल मेकिंग दोज बेटर फिल्म्स इज देयर अ फीलिंग दैट यू गेट व्हाइल यू आर इन इट कि हाँ यहाँ सुर सही बैठ रहा है?
हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल, वो एक खुशबू आती है। पर एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि जिसमें खुशबू नहीं आई है वो साली बहुत चली है।
वो कौन सी?
कमीने।
अच्छा वहाँ नहीं आ रही थी खुशबू?
कमीने में तो मतलब ये लग रहा था ये होगा कैसे, ये क्या होगा इसका।
अच्छा।
या कि ये कि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था डीओपी कास्ट के बीच में, डीओपी प्रोडक्शन के बीच में, प्रोडक्शन डिज़ाइनर प्रोडक्शन के बीच में, प्रोडक्शन डिज़ाइनर डीओपी के बीच में,
केओस चल रहा था।
केओस किसी और लेवल का, मतलब मुझे रोज़ पहुँच के वहाँ पे एक डेढ़ घंटा तो ये देखना पड़ता था कि आज का क्या प्रॉब्लम होगी।
गालियाँ देते हो आप जब ऐसे ऐसे माहौल हो जाता है तो?
हाँ हाँ क्यों नहीं, या मैं यूपी से हूँ
और आपने ओमकारा भी बनाई है।
जी जी
देते हो गालियाँ?
हाँ मतलब देता नहीं हूँ, निकलती है।
क्या गालियों में भी आप ये प्रोनंसिएशन का इतना ख्याल रखा जाता है? ख्याल सॉरी कैसे बोलते हैं?
उनमें नुक्ते नहीं होते हैं।
अच्छा उनमें नुक्ते नहीं होते।
हाँ मतलब ऐसे अल्फाज नहीं है जिसमें।
एक बार ख्याल बोलना आप।
ख्याल।
ओह मैन। है आप में बेटे, आपके बेटे में या इस जनरेशन में दिखता है आपको नुक्ता की प्रोनंसिएशन भी दिखती है क्या?
नहीं इनफैक्ट जो मैं अभी आप देख रहे थे अब है, सो मेरे साथ पिछले 5-6 साल से
जी,
अभी छोड़ने वाला है।
अच्छा।
क्योंकि मतलब अब इंडिपेंडेंट होगा, न्याय राज जिसको बोलते हैं, और ऑब्वियसली होना चाहिए
जी,
और मैं ही प्रोड्यूस करूंगा उसकी फिल्म
ऑफ कोर्स।
बट एक साल पहले मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि अब तू छोड़ने वाला है, तू बाहर दुनिया में जाएगा और तू बोलेगा ये चीज़ ख़राब हो गई, इसका ख्याल क्या है, तो मुझे शर्म आएगी
सॉरी,
और मुझे कोई पूछेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि इतने साल तुझे क्या बोलेंगे, ये सीख क्या है तो इतने साल। अब आप उसको बुला के सुनिए, अभी सुनिए उसका ख़राब क्या बोलता है। उस बेचारे ने मेहनत की, ख्याल ख्वाब ख़राब ऐसा बढ़िया
ख़राब।
हाँ
कैसे बोलना है, कैसे बोलना है एक बार?
नहीं नहीं ख़राब
एक बार सिखा दो।
नहीं नहीं वो ख़राब। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही।
मतलब ऊपर खुजली करनी है, क्या करना है मतलब?
हाँ
फिजिकली क्या करना है? खराब।
हाँ ये बिल्कुल सही है।
ख्याल।
अच्छा, सिखा सकते हो तुम, सबको सिखाना है यहाँ पे।
खराब।
बिल्कुल सही है। मुझे तो बहुत डराया जा रहा था कि समधीश तो ये करेगा, समधीश तो फंसाएगा।
कौन डरा रहा था आपको?
अरे सब डरा रहे थे मुझे।
कौन
है? मेरे अब उनके नाम थोड़ी बताऊंगा, तुम कल को उन्हें फंसा दोगे।
नहीं समधीश है, धनी है।
समदेश।
समदेश।
चलो कुछ तो गलत बोला मैंने उसके है ना। अच्छा अपने नाम का मतलब भी बताओ।
हर दिशा में समान।
ओ नाइस।
मेरा पता है इसमें एक चिट था संजीव कुमार, पंकज कपूर, दीपक दोबरियाल। तो संजीव कुमार के बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस थोड़ा और जाने, और चूंकि गुलजार साहब ने उनके साथ इतना काम किया है।
यह संजीव कुमार तो बहुत ही कमाल थे, वो वैसे तो पानी की तरह की नो, कि जिसमें भी मिल जाए उसी कलर में हो जाते थे।
पर वैसा एक्टर देखा आपने इस जनरेशन में?
अभी है बिल्कुल, इरफान वैसे थे, नसीर साहब वैसे, नसीर भाई, पंकज जी, पंकज जी तो कुछ और ही इंसान बन जाते हैं। पर
पंकज जी तो मटरू में क्या कर रहे हैं
जी
यार, वो तो ओपनिंग में ही जब वो बोलते हैं कि मोर्चा निकालो मैं इधर पीछे से आऊंगा, एंड देन व्हेन ही इज लाइक व्हाट इज इट, जब वो अंग्रेजी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं वो एक ही फिल्म में दो अलग इंसान है, एक ही कैरेक्टर में।
संजीव कुमार बहुत ही, फिर भी एक स्पेशल क्वालिटी थी उनके अंदर। एक मेरे पास एक सुविनियर की तरह एक चीज़ है
जी,
कि आई थिंक आंधी में या किसी में संजीव कुमार साहब को फिल्म फेयर अवार्ड मिला होगा।
अच्छा,
तो उसमें उन्होंने गुलजार साहब को एक डैनियल का लाइटर प्रेजेंट किया था, जो गुलजार साहब ने कोई 40-45 साल बाद मुझे हैदर बनाने पे दिया। तो मेरे पास वो सुविनियर की तरह रखा हुआ है, तुमने पहले बोला था तो मैं तुम्हारे लिए लेके आया था दिखाने के लिए। तो मेरा उनसे वो एटलीस्ट एक लाइटर से तो हम लोग जुड़े हुए हैं, कभी मिले नहीं, बट एक लाइटर से मैं और संजीव कुमार साहब जुड़े हुए हैं।
खुफिया पे आ जाते हैं
तो खुफिया नहीं है, खुफिया है।
क्या है?
खुफिया, छोटा ऊ है,
छोटा ऊ होता
पुलिस वाला,
खुफिया।
हाँ,
क्या फर्क होता है खुफिया और खुफिया में?
तुम बोले
खुफिया कुछ होता है,
बोले खुफिया बोल रहे हो तुम, बड़े ऊ की मात्रा लगा रहे हो।
तो क्या उस शब्द का कुछ मतलब है या?
नहीं, कुछ नहीं होता, गलत हो जाता है।
अच्छा, खुफिया होता ही नहीं कुछ,
मतलब खुफिया कुछ नहीं होता, खुफिया होता है।
ओ, मैं बचपन से गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, थैंक यू। तो खुफिया जो है एक तो साला नुक्ता प्रोनाउंस करो, ऊपर से ऊ की मात्रा याद करो। मैन, तो खुफिया जो है उसमें तब्बू जी के साथ आप दोबारा काम कर रहे हैं। सबसे इरिटेटिंग हैबिट क्या है तब्बू की?
तब्बू की इरिटेटिंग हैबिट ये है कि तब्बू जब अपना काम देखती है फिल्म बनने के बाद तो शी हेट्स हरसेल्फ
इन ऑल ऑफ द वर्स या कुछ एक्सेप्शन?
मेरे साथ जो किया उसमें तो वो मकबूल तो देखने नहीं आई थी, हैदर देखने के बाद तब्बू ने तो आंख बंद करती थी देखते हुए, हाय अल्लाह बर्बाद कर दिया, क्या किया,
क्या बात कर रहा।
सो तो शी इज वेरी क्रिटिकल ऑफ हरसेल्फ।
मुझे लगता है मैं एस्पियोनाज में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जो आपने हैदर का भी ओरिजिनल लिखा था, RNAW एजेंट और उसका बेटा, तो व्हाट आर द एस्पियोनाज फिल्म्स और टेक्स्ट्स दैट यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय?
बहुत सारी, जैसे एक हिचकॉक की फिल्म थी नोटोरियस, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। फिर उनकी मैन हु न्यू टू मच, जिसमें वो केसरा सरा एम्बेसी के अंदर जाके गाती है, उसका बच्चा ऊपर एम्बेसी के अंदर बंद है, बहुत खूबसूरत था वो भी। फिर जॉन लकार करके एक राइटर हैं, उनका पेन नेम है तो ब्रिटिश, उन्होंने सी उसमें MI6 में काम करते थे और उन्होंने बहुत लिखा है उस पर, टिंकर टेलर
सोच रहा था,
उन्हीं के लिखा हुआ है तो उनकी किताबें,
टिंकर टेलर भी फिल्म भी बहुत बेहतरीन,
बहुत बहुत बढ़िया थी। फिर उन्होंने नाइट मैनेजर शो,
अच्छा,
जिस पे इंडियन बना है, उसका ओरिजिनल भी जो है वो भी उन्हीं की बुक पे है।
अच्छा,
हाँ, तो वो है। और इंडिया में तो कोई बनी नहीं ऐसी एस्पियोनाज जिसको कि
इंडिया में एस्पियोनाज, मतलब राजी एक बहुत बेहतरीन पिक्चर है।
पर वो एस्पियोनाज
झूठ बोले जो उसे काट खाए मित्र। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन?
लैंडोर,
बेहतरीन जगह। रस्किन के साथ भी आपका कैसा रिश्ता, वो भी एक पूछने वाली बात।
हाँ, तो अगली बार तो लैंडोर दोनों वहाँ पे करते हैं।
I've seen the photo of your place in someone else's profile. सिगरेट कौन सी पीते थे जब पीते थे, या अभी पीते हो?
नहीं, मैं पीता था, मतलब गोल्ड फ्लेक्स से, इंडिया किंग्स पे, फिर क्यों तुम उनकी एडवर्टाइजिंग करा रहे हो? तंबाकू लिखना पड़ेगा सेहत के लिए हानिकारक।
हमें नहीं, अभी नहीं लिखना पड़ता,
अब वेट करो
जी, हम पे भी आएंगे, कुछ तो आएगा। थैंक यू सो मच विशाल
जी, थैंक यू।
इस कैमरा में देख के आपको बोलना है, माइक में उतरवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब आपको अपना ही बोलना है, एक तो एक्सपीरियंस आपने बता दिया अच्छा रहा, और करेंगे तो खुफिया स्ट्रीमिंग नाउ, जो भी बोलना होता है।
हाँ, मैं बोल देता हूँ, खुफिया स्ट्रीमिंग नाउ नेटफ्लिक्स, प्लीज वॉच इट एंड लाइक इट, ट्राई टू लाइक इट।
बोलो धुड़ुम। सब
दिशाओं में जो समान है आप उनको सब्सक्राइब करें, वो सब दिशाओं में समान रहेंगे, ये उनका वादा है।
मैं तो कॉस्को बॉल भी लाया था कि हम दोनों खेलेंगे कैच एम कैच। आपका जरा एक्शन दिखा ना कैसा था। अच्छा हाँ, लेग स्पिनर का तो यही है।
और गुगली के लिए क्या करना होता है आपको, आपको शोल्डर ज्यादा नीचे ले जाना होता है तो बॉल ऐसे उल्टा जाके।
अच्छा, और जो जो फास्टर बनता हो
उसके लिए तो आपको ग्रिप चेंज करके ऐसे स्पेस बॉलर
सीम अप। अच्छा
ऐसे कैमरे पे मार के
मारना
हो गया।